माना इस खतरे से अनजान अपने पिता की सेहत की चिंता कर रही थी। वो फैक्ट्री को अच्छे से चलाना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले उस लड़के से जिसे उसके पिता ने पसंद किया था मदद मांगने का फैसला किया। जब इसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था तब वो सबसे पहले अस्पताल पहुंचा था। महेश खन्ना जी को एडमिट करवाने में उसने माना की बहुत मदद की थी। मनाल को उसका ये मदद करना अच्छा लगा था। वो अपने दिल में उसके सपने संजोने लगी थी। वो उसके साथ जीवन भर के सपने देखने लगी थी। वो उसे अच्छा लगने लगा था। मगर उसके बाद वो एक बार भी उसके पिता को देखने नहीं आया था। मनाल को लगा शायद वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, इसलिए वो नहीं आ सका। उसकी माता पिता भी उसके पिता को अस्पताल में भर्ती करवाते वक्त पहुंच गए थे। उन्होंने माना की माँ को संभालने में बहुत मदद की थी। मनाल को उसके माता पिता भी अच्छे लगे थे। शौर्य की माँ ने मनाल से कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, फिर शौर्य है, ये सब संभाल लेगा। जब माना को किसी सहारे की जरूरत थी तब सच में शौर्य और उसके परिवार ने मनाल की बहुत मदद की थी। उसके पिता का निर्णय जो उन्होंने माना की शादी शौर्य से करने का लिया था माना को सही लग रहा था। पहले दिन तो शौर्य ने उसकी इतनी मदद की थी, वो दिन रात वहीं अस्पताल में उसके पास रहा था। माना और उसकी माँ के खाने पीने की भी उसने पूरी चिंता की थी। माना, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल मत घबराना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो माना को हौसला देता रहा था। माना को सचमुच उसका बहुत सहारा मिला था। शौर्य एक बार अस्पताल से घर गया था, फिर उसके साथ माना की कोई बात नहीं हुई थी। उसका फ़ोन भी नहीं आया था। मनाल को ये बात थोड़ी अजीब ज़रूर लगी थी। बाद में मनाल ने सोचा, शौर्य को ज़रूर कोई ज़रूरी काम हो गया होगा। पहले तो वो दिन रात उसी के पास था, अपना काम भी तो देखना पड़ता है, और इस समय उसे सबसे ज्यादा वही अपना लगा। वो उसके घर चली गई। वहां पहुंचकर पता चला कि वो सब लोग वहां पर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं और शायद कुछ दिनों बाद लौटेंगे। उनके घर के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड था मनाल ने उससे बात की। जब मनाल अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम घर पर कोई नहीं है। शौर्य और उसके माता पिता में से कोई तो घर पर होगा। नहीं मैडम, कई दिन हो गए वे बाहर गए हुए हैं। कुछ बता सकते हो कब तक आएंगे? नहीं मैडम, उन्होंने कहा है कि हमें थोड़े दिन लगेंगे, हम उसके बाद ही आएंगे, आप चाहें तो फ़ोन करके पूछ सकती हैं। उसने कई बार शौर्य का फ़ोन ट्राई किया मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर उसने उसके माता पिता का नंबर भी ट्राई किया, फ़ोन की घंटी बजती रही मगर किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो परेशान हो गई। अचानक शौर्य और उसके माता पिता को क्या हो गया? वो तो उसकी इतनी मदद कर रहे थे, और फिर शौर्य उससे प्यार भी करता है, अब अचानक कोई उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वो सोचने लगी, कोई बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई शौर्य और उसके परिवार को डरा रहा था, इसलिए वे घर छोड़कर थोड़े दिनों के लिए कहीं और रहने चले गए थे। मगर माना को किसी बात की खबर नहीं थी। क्या करें, ऐसा क्या हो गया? इतना तो वो समझ गई थी कि उसे वहां से मदद नहीं मिलेगी, मगर कारण क्या था उसकी समझ में नहीं आया था। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो शौर्य और उसकी फैमिली मुझसे नाराज़ है? कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, और शौर्य शहर से बाहर गया, मुझे बताकर भी नहीं गया, जब उसे पता है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत है। मैं पापा के किसी दोस्त से मदद मांगती हूँ, शायद मुझे वहाँ से मदद मिल जाए, वो सोचने लगी। वो अपने पिता के कई दोस्तों से मिली मगर कोई भी उसे नहीं मिला, किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अगर कोई मिला भी तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि वो मनाल की मदद नहीं कर सकता, इसलिए माना को दूसरी बार वहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। वो उन सबकी बातें सुनती रही। सब लोगों ने मनाल के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे माना की किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत हैरान हो रही थी, असली बात वो नहीं जानती थी। सच पूछो तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि उससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो उसके ऊपर मंडरा रही है। उसके पिता का एक्सीडेंट तो बस एक शुरुआत थी। मनोहर लाल ने उसके पिता का एक्सीडेंट कराया था, उसका मकसद महेश खन्ना जी को मारना था। मगर जब वे कोमा में चले गए तो मनोहर लाल ने अपने आदमियों से कह दिया कि वो महेश खन्ना को अब ना मारे, होने दो खर्चा उसकी फैमिली का, देखते हैं कहाँ से लाते हैं वो इतना पैसा। जब शौर्य और उसके माता पिता सबसे पहले माना की मदद के लिए वहां पहुंचे तो मनोहर लाल ने उस लड़के को धमकाया। उसने शौर्य से कहा, अगर तुम्हें अपनी और अपनी फैमिली की जान प्यारी है तो इस लड़की का पीछा छोड़ दो, इस लड़की से नाता ही तोड़ दो, जैसे तुम उससे कभी मिले ही नहीं। याद रखो, अब वो मेरी है, उससे मैं शादी करूंगा, समझ गए? उसके बाप का एक्सीडेंट भी मैंने कराया है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेगी, याद रखना। शौर्य उससे डर गया था, वो मनाल के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मनोहर लाल ने उसके बाद उसके पिता को फ़ोन किया था, अगर तुम्हें अपने बेटे शौर्य की जान प्यारी है और साथ में अपनी और अपनी बीवी की भी, तो थोड़े दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चले जाओ, मनाल के आसपास भी मत जाना तुम लोग। महेश खन्ना का एक्सीडेंट मैंने किया है और इसके बाद नंबर तुम्हारा होगा, अगर तुम फिर माना से मिले। मनोहर लाल ने पूरे परिवार को धमकाया था। शौर्य और उसकी फैमिली बहुत डर गए थे, वे उसके फ़ोन के बाद रातों रात शहर छोड़कर चले गए। शौर्य ने माना का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था, अगर जिंदा रहा तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी, मैं माना के लिए नहीं मर सकता, शौर्य सोचने लगा था। मनाल अपने पिता के जिन जिन दोस्तों के पास भी जाने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, जिनसे भी मदद मांगने की कोशिश की, मनोहर लाल ने उन सभी को धमकाया था, अगर किसी ने भी माना की मदद की तो उसे मार दिया जाएगा। केवल एक को नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा जो माना की मदद करेगा। जो भी लोग माना की मदद के लिए तैयार होते थे वो उनके पास यही कहकर फोन करता था और साथ में ये भी कहता, जिसको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी हो लिखा दो, मैं नहीं डरता पुलिस से। वैसे भी जब तुम लोग ही मर गए तो पुलिस बाद में क्या करेगी, और वैसे भी सबके बच्चे तो हैं ही, किसी के स्कूल जाते हैं तो किसी के कॉलेज में, किसी को भी उठा सकता हूँ। मनोहर लाल की इन धमकियों से सभी लोग माना की मदद करने से पीछे हट गए थे। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसे इस बात का कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच उसे पता चला कि उसकी दवाइयों का एक पूरा स्टॉक, जिसका ऑर्डर मिस्टर डिसूजा की कंपनी ने दिया था, पूरा स्टॉक जो मिस्टर डिसूजा के यहाँ जाना था, मिस्टर डिसूजा ने यह कहकर कि ये पूरा स्टॉक खराब है वापस भेज दिया था और उसकी पेमेंट भी नहीं की थी। दवाइयों के पूरे स्टॉक के वापस आने से माना का बहुत नुकसान होने वाला था, इसलिए उसने मिस्टर डिसूजा से मिलने का फैसला किया। इसके लिए वो मिस्टर डिसूजा के ऑफिस चली गई, मगर मिस्टर डिसूजा ने उसे मिलने का समय नहीं दिया था तो वो वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगी। उसने मिस्टर डिसूजा की सेक्रेटरी से कह दिया था कि वो वहीं बाहर बैठी हुई है, जब भी वे फ्री होंगे वो उनसे मिल लेगी। वो बैठकर वहीं मिस्टर डिसूजा का इंतजार करने लगी थी। वो बहुत परेशान थी।
तभी उसके पास आदित्य राजवंश आया। हेलो माना, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें। मनाल ने आदित्य राजवंश को पहचान लिया। चाहे इतने साल बीत चुके थे, फिर भी आदित्य राजवंश को कोई भूल जाए ऐसा तो वो थी नहीं। अब तो वो पहले से भी देखने में आकर्षक हो गया था और एक कामयाब बिजनेसमैन था। अब वो कॉलेज गोइंग बॉय नहीं था, मगर मनाल अनजान बन गई। जी कहिए, मैं आपको नहीं पहचाना, माना ने कहा। आदित्य समझ गया कि मनाल उसे अवॉइड कर रही है। सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया, कहकर वो आगे चला गया। जब आदित्य राजवंश मिस्टर डिसूजा के ऑफिस के अंदर आया, उसने सामने माना को बैठे देखा। कई साल बीत गए थे मगर वो माना को एक पल में ही पहचान गया था। आखिर वो वही लड़की थी जो उसके सपनों की राजकुमारी थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। उसने नहीं सोचा था कि मनाल उसे ऐसे मिल जाएगी, तो वो उसे मिलने के लिए उसके पास चला गया, मगर मनाल ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। एक बार तो वो उसके पास से चला आया, मगर उसने अपने आदमियों से उसके बारे में जानकारी निकालने को कहा था, क्योंकि माना कितनी परेशान थी ये उसके चेहरे से दिख रहा था। और माना की परेशानी वो कैसे सह सकता था, जो उसका प्यार थी, उसने इतने सालों से उसे चाहा था। माना मिस्टर डिसूजा के ऑफिस में शाम तक बैठी रही। शाम को उसकी सेक्रेटरी ने आकर माना से कह दिया, सॉरी मैडम, सर पिछले दरवाजे से चले गए, उन्हें बहुत काम था। मनाल बहुत उदास होकर वहां से आ गई थी। ये वो ज्यादा समय था जिसका मनोहर लाल को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब जैसा वो चाहता था माना उसके आगे झुक जाती। बस मनोहर लाल उसके पिता का नाम लेकर ब्लैकमेल करने वाला था। मनाल उससे शादी भी कर ले वो जानता था। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं माना, जब तुम मेरी बाहों में होगी और तुम मेरे बिस्तर पर होगी, मैं तुमसे जैसे चाहे वैसा करूंगा, वैसा खेलूंगा तुम्हारे साथ। वो मनाल के ही सपने देखने लगा था। सोते जागते दिन रात वो माना के ख्यालों में ही गुम था। अब जैसे मनाल को पाना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। मनाल को पाने के लिए उसने बहुत हथकंडे अपनाए थे और अब वो मनाल को पाने के करीब पहुंच गया था। अब वो माना के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाने वाला था। क्या